नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। अफगानिस्तान के काबुल में एक अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमले में 400 लोगों की मौत और 250 घायल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ब्रसल्स में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से पश्चिम एशिया संघर्ष पर बातचीत की। सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों से कहा, दूतावास से समन्वय किए बिना ईरान की सीमा पार न करें। भाजपा के संजय भाटिया और कांग्रेस के कर्मवीर सिंह बौद्ध हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों पर निर्वाचित। महाराष्ट्र विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित। जबरन धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह के जरिए धर्मांतरण पर लगेगी रोक। किदांबी श्रीकांत, आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा आज से फ्रांस में शुरू हो रहे ऑर्लीन मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती पेश करेंगे। अब समाचार विस्तार से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल रात एक अस्पताल पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमले में कम से कम 400 लोग मारे गए और करीब 250 घायल हो गए। एक रिपोर्ट।
तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तानी हवाई हमले में अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है और हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सैन्य शासन ने एक बार फिर अफगानिस्तान की हवाई सीमा का उल्लंघन किया है और काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया है, जिससे वहाँ इलाज करा रहे मरीजों की मौत हुई है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थानों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तानी सेना ने काबुल पर कई बार हमले किए हैं, जिसमें भारी संख्या में नागरिक मारे गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रसल्स में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने ईरान और यूक्रेन के संघर्ष को लेकर चर्चाएं की तथा यूरोप के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर बातचीत की। एक रिपोर्ट।
डॉक्टर एस जयशंकर यूरोपीय संघ के विदेश मामलों की परिषद की एक बैठक में भागीदारी करने के लिए यूरोपीय संघ के विदेश और सुरक्षा नीति की प्रमुख कजा कल्लास के निमंत्रण पर बेल्जियम की राजधानी के 2 दिन के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन और जर्मनी, ग्रीस और बेल्जियम के विदेश मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठक की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ बैठक के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जनवरी महीने में सुश्री उर्सुला की भारत की बेहद सफल राजकीय यात्रा भारत यूरोपीय संघ के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। सुश्री कल्लास ने कहा कि यूरोपीय संघ विदेश मामलों की परिषद ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की बेहतर सुरक्षा को लेकर चर्चा की। ईरान द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बाधित करने के बाद वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वॉडेफुल के साथ हुई बातचीत के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया में संघर्ष को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को सख्त सलाह दी है कि वे तेहरान स्थित भारतीय दूतावास से पूर्व और स्पष्ट समन्वय के बिना आगे की यात्रा के लिए ईरान की किसी भी सीमा को पार करने का प्रयास न करें।
दूतावास ने कहा कि उनकी जानकारी और मार्गदर्शन के बिना सीमाओं के माध्यम से ईरान छोड़ने के प्रयास करने वाले भारतीय नागरिकों को गंभीर रसद और आवर्जन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दूतावास ने कहा कि भूमि सीमाओं की ओर अनियोजित आवागमन को सख्ती से रोका जाएगा। वे भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ नियमित संपर्क में है और जहां भी आवश्यक हो समन्वित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कल कतर एयरवेज की उड़ानों से लगभग 1,100 भारतीय यात्री नई दिल्ली, मुंबई, कोच्चि और अन्य शहरों के लिए रवाना हुए। इन शहरों के लिए आज भी उड़ानें संचालित होंगी। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारतीय पोत शिवालिक कल 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंच गया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि एक अन्य पोत नंदा देवी भी आज भारत पहुंच जाएगा। तीसरा पोत जग लाडकी संयुक्त अरब अमीरात से रवाना होकर 81,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ स्वदेश आ रहा है। ईरान के भारतीय ध्वज वाले जहाजों के सुरक्षित आवागमन के बदले फरवरी में जब्त किए गए 3 टैंकरों को छोड़ने का अनुरोध वाली मीडिया रिपोर्ट को सरकारी सूत्रों ने निराधार बताया है। सूत्रों के अनुसार भारत और ईरान के अधिकारियों के बीच इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया और कांग्रेस पार्टी के करमवीर सिंह बौद्ध हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं। 2 सीटों के लिए कल मतदान हुआ था। 9 अप्रैल को भाजपा के सदस्य किरण चौधरी और रामचंद्रन जांगड़ा का कार्यकाल पूर्ण होने से हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। लोकसभा में आज रेल मंत्रालय की 2026-27 के लिए अनुदान मांगों पर आगे की चर्चा और मतदान होगा। उधर राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन विनियोग विधेयक 2026 को विचार और पारित कराने के लिए पेश कर सकती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 ध्वनि मत से पारित कर दिया है। इसमें जबरन धोखाधड़ी प्रलोभन या विवाह के जरिए कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। विधेयक के अनुसार विवाह के बहाने गैरकानूनी धर्मांतरण में शामिल लोगों को 7 साल की कैद और 1,00,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। सामूहिक धर्मांतरण के लिए 7 साल की कैद और 5,00,000 रुपए का जुर्माना होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रबंध किए हैं। सख्त निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया जाएगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार 100% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग अनिवार्य होगी। राज्य के चुनावी इतिहास में पहली बार निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। सरकार ने गेहूं और धान की खरीद में लगे आढ़तियों और सहकारी समितियों को दिए जाने वाले कमीशन दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित दरें रबी विपणन सीजन 2026-27 से लागू होंगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधन के बाद पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खरीद पर आढ़तियों को मिलने वाला कमीशन 46 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 50 रुपए 75 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि राजस्थान में गेहूं के लिए ये 41 रुपए 40 पैसे प्रति क्विंटल से बढ़कर 45 रुपए 67 पैसे प्रति क्विंटल हो जाएगा। धान के लिए कमीशन 45 रुपए 88 पैसे प्रति क्विंटल से बढ़कर 50 रुपए 61 पैसे प्रति क्विंटल हो जाएगा। इसी प्रकार सहकारी समितियों के लिए गेहूं की खरीद पर कमीशन 27 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 29 रुपए 79 पैसे प्रति क्विंटल और धान की खरीद पर 32 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 35 रुपए 30 पैसे प्रति क्विंटल हो जाएगा। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष 4 धाम यात्रा के लिए विशेष स्वास्थ्य प्रबंध किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी उचित समय पर ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल के जरिए की जाएगी।
तीर्थ यात्रा मार्गों, मुख्य पड़ावों और 4 धामों की स्थायी तथा अस्थायी चिकित्सा इकाइयों में अनुभवी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए जाएंगे। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यात्रा मार्गों पर 170 एम्बुलेंस तैनात रहेंगी, जिनमें 108 आपातकालीन सेवा, एडवांस लाइफ सपोर्ट और कार्डियक एम्बुलेंसेज शामिल है। इसके अलावा टहरी में एक बोट एम्बुलेंस और एक हेली एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेगी, जिसका संचालन एम्स ऋषिकेश के माध्यम से किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि यात्रा मार्गों पर एम्बुलेंस का प्रतिक्रिया समय कम से कम रखा जाएगा, ताकि तीर्थ यात्रियों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा आज फ्रांस में शुरू हो रहे ऑर्लीन मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती पेश करेंगे।
भारत के पूर्व शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में मैग्नस जोहानसेन का सामना करेंगे। आयुष शेट्टी अपने अभियान की शुरुआत ली चिया हाओ के खिलाफ करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा सुपनिदा केटेथोंग से भिड़ेंगी और एआर पोचाना का सामना अपने ही देश के ए डोडा वरापू से होगा। महिला डबल्स में अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम का मुकाबला रुई हिरोकामी और साइका होबारा से होगा। विशेष शुक्ला।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
धन्यवाद प्रियंका। ओर्मुज जलडमरू मध्य से आई खुशखबरी, एलपीजी लेकर भारत पहुंचा शिवालिक। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच इस खबर को राजस्थान पत्रिका सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला लिखता है, होर्मुज के पास भारतीय नौसेना तैनात, ऑनलाइन सिलेंडर बुकिंग 84 से बढ़कर 90% हुई। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर अमरीका को अपनों ने अकेला छोड़ा। जर्मनी, इटली और स्पेन समेत 7 देशों ने युद्धपोत भेजने की ट्रंप की अपील ठुकराई, मुश्किल में पड़े ट्रंप। इस शीर्षक से दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है कि ट्रंप का संकट केवल ये नहीं है कि उन्हें अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल रहा, बल्कि ये भी है कि अमरीका में उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। अमर उजाला ने वाणिज्य सचिव के बयान को प्रकाशित किया है, शुल्क व्यवस्था पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही अमरीका से व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। दैनिक जागरण की खबर है, दिल्ली से अमृतसर तक सेना के मूवमेंट पर नजर रखने की पाकिस्तान की साजिश बेनकाब। आईएसआई के निर्देश पर सोनीपत के बाद अंबाला कैंट स्टेशन पर लगने वाले थे कैमरा। राज्यसभा चुनाव पर भी अखबारों की नजर है, दैनिक भास्कर की सुर्खी है, एनडीए को 6 सीटों का फायदा, नीतीश और नितिन नवीन राज्यसभा पहुंचे, ओडिशा में हुई क्रॉस वोटिंग। साहित्यकार ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए 2025 के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने की घोषणा को नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, अफगानिस्तान के काबुल में अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमले में 400 लोगों की मौत और 250 घायल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ब्रसल्स में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से पश्चिम एशिया संघर्ष पर बातचीत की। सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों से कहा, दूतावास से समन्वय किए बिना ईरान की सीमा पार न करें। महाराष्ट्र विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित। जबरन धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह के जरिए धर्मांतरण पर लगेगी रोक। और किदांबी श्रीकांत, आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा आज से फ्रांस में शुरू हो रहे ऑलिन मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती पेश करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।